अभी अगला सेशन भी हमारा बहुत ही सुंदर है जिसका टॉपिक है हार्मनी एंड हैप्पीनेस इन रिलेशनशिप। हर कोई क्या चाहता है, हैप्पीनेस एंड हार्मनी ना, तो उसको लेने के लिए हमारे बीच में है राजयोगिनी कविता दीदी जी, जो कि विशेष रूप से भरतपुर से हमारे बीच में आए हैं। हम जोरदार कर्तव्य ध्वनि से दीदी का स्वागत करते हैं। मैं बहनों से भी निवेदन करूंगी कि दीदी को प्लांट्स और बुके देकर के बैच के साथ सम्मानित करें। दीदी जी ने 1974 में ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त किया और दीदी जी का जो जन्म है वो यूपी मेरठ में हुआ। आपने एमए संस्कृत में किया, देन पीएचडी करते हुए आपने अपने जीवन को इस ईश्वरीय सेवाओं के अर्थ समर्पित कर दिया। आप 1979 से सेवाएं देते हुए नोएडा, बड़ोदरा, आगरा से सेवाएं देते हुए 1960 से आप भरतपुर में एज अ प्रभारी के रूप में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वर्तमान समय आप आगरा सब जोन की संयुक्त प्रभारी के रूप में भी सेवाएं दे रहे हैं। आपके सानिध्य में 3 सेवा केंद्र और 15 उप सेवा केंद्र और 300 से भी अधिक गीता पाठशाला आपके नेतृत्व में संचालित की जा रही हैं। और जैसे कि आप जानते हैं, जैसे जूरिस्ट विंग है, ऐसे अनेक विंग्स हैं, सिक्योरिटी, मेडिकल, वुमेन एजुकेशन, ऐसे आप बाकी भी विंग्स में अपनी सेवाएं वक्तव्य के रूप में देते रहते हैं। और बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, हॉस्पिटैलिटी में, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट्स में भी आप सेवाएं देते हैं। और जो एक बहुत सुंदर हमारा इंटरनेशनल प्रोग्राम्स हुए हैं, जैसे ग्लोबल फेस्टिवल फ्यूचर ऑफ द पावर जैसे प्रोग्राम्स में भी आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ऐसे आदरणीय दीदी का मैं फिर से जोरदार कर्तव्य ध्वनि से अभिनंदन करती हूँ। आज का टॉपिक है हार्मनी एंड हैप्पीनेस इन रिलेशनशिप, आदरणीय राजयोगिनी कविता दीदी जी। इससे पहले हम 1 मिनट का साइलेंस जरूर करेंगे।
आयम निजह परो वेति गणना लघु चेत साम उदार चरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम्। मालिक एक फिर क्यों बटा हुआ संसार है, सबका मालिक एक फिर क्यों बटा हुआ संसार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है,
सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है।
सबका मालिक एक फिर क्यों बटा हुआ संसार है, सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है,
सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है।
ओम शांति, सभी बोलिए ओम शांति। आप ब्रह्मा कुमारी इस परिवार के जुरिस्ट विंग कॉन्फ्रेंस में पधारे हैं भारत के कोने कोने से। जुरिस्ट के विभिन्न पदों पर और जुरिस्ट के क्षेत्र से जुड़े हुए आप सभी भाई बहन हैं, तो मैं आपसे जानना चाहती हूं कि जब आप यहां आने का सोच रहे थे उस समय आपका सोच, आपका विजन, और जब आप यहां पहुंचे उस सोच विजन में कुछ अंतर पाया? जी, अंतर है या वैसा ही है जैसा सोच रहे थे? अंतर है ना, सबने अंतर पाया। उसके पीछे क्या है? उसके पीछे है कि हमारा और आपका संबंध है। और वो संबंध कौन सा है? हाँ, बजा सकते हैं ताली। वो कौन सा संबंध है आपका और हमारा? वो आध्यात्मिक संबंध है। और जब आप यहां आए और इन संबंधों में आपने अपने आप को देखा, जिया, सुना, तो क्या अनुभव कर रहे हैं आप? आनंद, खुशी, सद्भाव और अब आत्मीयता, इसका अनुभव कर रहे हैं। जो कर रहे हैं इन सब चीजों को यहां आकर पिछले 3 दिन से, वो हाथ उठाइए। धन्यवाद। तो अभी गीत के बोल भी हम यही सुन रहे थे कि ईश्वर के ये सारी वसुधा हमारा परिवार है, और परिवार माना जहां संबंध होती है, और संबंध में एक दूसरे का ध्यान रखा जाता है, एक दूसरे को महत्व दिया जाता है, एक दूसरे को गुण विशेषताओं को अवसर दिए जाते हैं, उनको उनके अंदर से डेवलप किया जाता है, और उनके माध्यम से हम एक दूसरे के संपर्क में, संबंध में, व्यवहार में और कर्म में जब आते हैं तो हमें खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, अपनापन मिलता है, और उससे हम बार बार जिनसे हमें, जिस संबंध से ये चीजें प्राप्त होती हैं, उस संबंध में हम बार बार आना चाहते हैं। तो इस आध्यात्मिक संबंध से हम अनुभव कर रहे हैं कि हमारे अनेक प्रकार के संबंध होते हैं। ईश्वरीय संबंध है हमारा इटर्नल संबंध, चाहे हम स्वीकारें या न स्वीकारें, चाहे उस संबंध को हम निभाएं या न निभाएं, चाहे उस संबंध को हम समय दे रहे थे या नहीं दे रहे थे, लेकिन ईश्वर से हम सर्व मनुष्य आत्माओं का अविनाशी शाश्वत संबंध है। तभी अनायास हमारे मुख से निकल जाता है, ओ गॉड। कोई मुश्किल बातें आती हैं जीवन की, असंभव हमारी मुश्किलें जीवन में आ जाती हैं, तो हम उस ईश्वर को याद करते हैं, आवाहन करते हैं, लेकिन किस संबंध से कर रहे हैं ये हमें मालूम नहीं होता, जिसका ही परिणाम है कि हम उस ईश्वरीय संबंध की सद्भाव को, खुशी को, आनंद को अनुभव नहीं कर पाते। लेकिन यहां आकर आप इस आध्यात्मिक संबंध की खुशबू जो ले रहे हैं, संबंध से जो सद्भाव और खुशी मिल रही है, उससे आप अनुभव कर सकते हैं कि ईश्वरीय संबंध इससे भी ज्यादा देने वाला है। वो हमारा शाश्वत और हर जन्म के देने वाला दाता है। आज हम देखते हैं हमारे पारिवारिक संबंध हैं। परिवार छोटा सा परिवार होता है, परिवार के अंदर माता, पिता, भाई, बहन, ये 4 संबंध होते हैं, उनको हम बचपन से जीते आते हैं। और उनसे हमें बहुत सुख और खुशी और आनंद मिलता है। और एक समय ऐसा आता है जब उनसे अलग होने की बात होती है तो हमारा मन रिक्त और बोझिल हो जाता है। तो संबंधों में सुख है, संबंधों में खुशी है, लेकिन कौन से संबंधों? व्यवसायिक संबंध भी है हमारे, विभिन्न प्रोफेशन से समाज हमारा जुड़ा हुआ है, उससे भी संबंध होते हैं। वहां पर भी कुछ बातों का हमें ध्यान रखना होता है, जिससे हम अपने प्रोफेशनल टाइम के अंदर उन संबंधों पर ध्यान देते हुए हम उनसे सद्भाव और खुशी का, आनंद का अनुभव कर सके। तो आइए आज इन सारी बातों पर और इस अपने आध्यात्मिक परिवेश के अनुभव से हम मंथन चिंतन करते हैं। आप पिछले 3 दिन से ओम शांति शब्द का उच्चारण तो कर रहे हैं ना, और जब करते हैं तो एक आंतरिक शक्ति का अनुभव होता है, आपके अंदर एक आत्मीयता का अनुभव होता है, और ऐसे लगता है कि कहीं साइलेंस में चले जाए। तो ये ओम शांति का महामंत्र हमें बताता है कि हम खुद से जुड़े, खुद से संबंध रखें। और जो खुद से संबंध रखना सीख लेता है वो सर्व संबंधों को बड़े आनंद के साथ जी लेता है। आज हमारे सामाजिक प्राणी होने के नाते हमारे बहुत प्रकार के संबंध हैं। उन सभी संबंधों से हम प्राप्त भी कर रहे हैं, हमने खुशी भी ली है, सुख भी लिया है, और उनसे हमने जिया भी है। उन्होंने हमारा ध्यान भी रखा है, वक्त वक्त पड़ने पर उन्होंने हमें सहयोग भी दिया है, और हमें आगे भी बढ़ाया है जीवन के इस चक्र में। लेकिन आज जब संबंधों में सद्भाव का कहीं अभाव पाते हैं, संबंधों में खुशी कम और दुख अधिक पाते हैं, तो चिंतनशील प्राणी होने के नाते हमारा चिंतन चलता है कि क्या कुछ हमसे मिस हो गया, जो आज हमारे संबंध जो सुखदाई थे उसमें कष्ट होने लगा, जिस संतान को पाने के लिए हम इतना तप जप और इतने प्रयत्न करते थे, जिन माता पिता के पाने के लिए हमने जन्म जन्मांतर अनेक उपाय किए, लेकिन आज उन्हीं संबंधों में, पति पत्नी जैसे विश्वसनीय संबंधों में कहीं दुख, अशांति और बिछड़ाव आ गया है। सभी महसूस करते हैं ना घुटन, कि आज घर में जो एक स्वर्गिक वातावरण होना चाहिए, जिसके आकर्षण में व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र से खिंचकर आता था, आज वो डोरी स्नेह की, अपनेपन की, सुख शांति की कहीं टूट गई है, या कमजोर हो गई है, या स्वार्थ बीच में आ गया है। तो आज कुछ बातों पर अटेंशन देंगे और उनको अपने जीवन में डबल लाइन करते हुए अपने जीवन की सुख शांति को कायम करेंगे, और अपने से संबंध रखते हुए अपनी इंटरनल वैल्यूज को डेवलप करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जिन माता पिता ने हमें इतने प्यार से परवरिश करके समान समकक्ष मानव बनाया, व्यक्ति बनाया, सदस्य बनाया, अचानक हमें उनमें ही कमियां नजर आने लगती हैं। संबंधों की मधुरता को खत्म करने वाला अगर कोई जहर है, तो ये दो चीजें ऐसी आती हैं जीवन में जो हमारे संबंधों की मधुरता को कहीं कटुता में, अशांति में परिवर्तित कर देती। पहली चीज है अवगुणों को उठाना। हम अपने ही पिता माता, जिन्होंने अपनी सर्वस्व सामर्थ्य को जोड़कर हमें लायक बनाया, हमें बलशाली शक्तिशाली बनाया, उनको ही हम कमियां ढूंढने लगते हैं। दूसरे ऐसे हैं, कंपैरिजन करने लगते हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। ये सिर्फ माता पिता और बच्चों के अंदर ही नहीं, किसी भी संबंध में यदि हम कमियों को देखना, कमजोरी को देखना या अवगुणों को देखना या कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं तो हमारे संबंधों की मिठास, हमारे संबंधों की आत्मीयता, सद्भाव कहीं कमजोर पड़ने लगता है। तो हम यहां आध्यात्मिक ऑर्गेनाइजेशन में आए हैं तो यहां से ये एक दृष्टिकोण लेकर जाएं, एक चिंतन लेकर जाएं कि उस परम सत्ता ने, उस परम सत्य ने हर मानव को, हर मनुष्य को, प्राणी मात्र को कोई न कोई विशेष गुण अवश्य दिया है, जिन गुणों के आधार से ही वो अपने जीवन को जी रहा है या अपने जीवन के मूल्यों को बनाए हुए। तो हम गुण उठाने का दृष्टिकोण रखेंगे तो हम पाएंगे कि हमारी गुणग्राही दृष्टि, हमारी उनके प्रति गुणों को ढूंढने का कार्य उनसे हमें मधुरता प्रदान कराएगा। मुझे याद आता है इसके ऊपर कि एक मानव ने ईश्वर की आराधना की और उनसे कहा कि मैं अपने संबंधों में सदा सुखी रहूं, खुशी रहूं, आनंद का अनुभव करूं और मैं किसी को कष्ट ना पहुंचा सकूं, ऐसा कुछ मुझे शक्ति दीजिए, वरदान दीजिए। अभी हम जस साहब से सुन रहे थे कि ईश्वर तो सबको क्षमा करके दे दिया कि वरदान के साथ साथ एक काम भी मैं आपको देता हूं। ये जो कांवर है, इस कांवर को आप ले जाओ और इस कांवर के जो दो पलरे हैं उसमें एक पलरा काले रंग का है और एक पलरा सफेद रंग का है। तो ये जो काले रंग का पलरा है कांवर का, उसे पीछे रखना और श्वेत रंग का जो पलरा है उसको आगे रखना। उसने कहा बस इतनी सी बात कि हाँ, जीवन की एक यात्रा है, इस यात्रा के अंदर आप अपनी जिम्मेदारी को उठाते हुए, जीवन को जीते हुए ये कांवर को कंधे पर रखना और इसका जो स्टैंड होगा वो काला पलरा पीछे और श्वेत पलरा आगे होगा। अर्थात जो भी संबंध हमारे जीवन में आए उनकी कमी कमजोरी रूपी काले पलड़े को पीछे की तरफ रखना और गुण विशेषताएं, अच्छाइयां और उनके सत्कर्मों को आगे की तरफ रखना। हर मानव में गुण और अवगुण दोनों हैं, अच्छाई और बुराई दोनों हैं। किसी में किसी की परसेंटेज अधिक है, किसी में किसी चीज की परसेंटेज अधिक है, लेकिन हम यदि उन गुणों को उठाते जाते हैं और गुणों का आदान प्रदान करते हैं और गुणों के दृष्टिकोण से हम जीवन को जीते हैं, व्यवहार में आते हैं, कर्म में आते हैं, तो हम सभी जानते हैं जो करते हैं वही रिटर्न होकर हमको प्राप्त होता है, कई गुना होकर आता है। हम पृथ्वी में एक बीज बोते हैं तो पृथ्वी हमें वृक्ष देकर अतुलनीय प्राप्ति कराती है। ठीक इस प्रकार से आप यहां से जब जाएंगे तो इन चीजों को आप अपने जीवन से जोड़ना तो आप पाएंगे कि जैसे उसकी जीवन की यात्रा में इस कार्य को उसने किया तो थोड़े ही दिन में सब लोगों का वाइब्रेशन, दृष्टिकोण और व्यवहार उनके प्रति क्या हुआ, बदलने लगा। एक दिन रात में भूकंप आया और उस भूकंप में वो दौड़ा दौड़ा तो उसको आज्ञा थी कि ये कांवड़ कभी नहीं छोड़ना, तो उसने कांवड़ को उठाया और वो कांवड़ का पल्ला आगे वाला पीछे और पीछे वाला आगे हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जैसे उसके जीवन में पहले दुख, अशांति, कलह, कलेश था, मेरी कोई सुनता नहीं, मेरी कोई मानता नहीं, मैं किसी को पसंद आता नहीं, मेरे से कोई व्यवहार अच्छा करता नहीं, ये शिकायतें जो बनी हुई थी वो फिर से उसके जीवन में आने लगी। असंतुष्टता प्रसन्नता का जीवन संबंधों में फिर होने लगा। कहने का भाव है कि हम हर मनुष्य आत्मा के संबंध में, चाहे वो हमारे पारिवारिक संबंध है, चाहे व्यवसायिक संबंध है, चाहे हमारे इटर्नल ईश्वर और अपनी आत्मा के बीच के संबंध है, चाहे हमारे धर्म के स्तर के संबंध है, समाज के साथ विभिन्न संबंध है, उन सभी संबंधों में हम यदि गुणों को उठाना शुरू करते हैं तो हमारा जीवन भी गुणवान बन जाता है। दूसरा संबंधों में देखने में आता है कि आज जो अवगुण हमारे अंदर खुद हैं और जिन अवगुणों से हम खुद परेशान हैं, जिन्हें हम खुद निकालना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, लेकिन उसको हम सामने वालों में भी देखने लगते हैं, जिसे कहते हैं प्रोजेक्शन एंड रिफ्लेक्शन की थ्योरी। जो हमारे अंदर है वही हमें सामने वाले में दिखने लगता है, क्योंकि वो संबंध में प्रियता होती है, अपनापन होता है। जो कमी कमजोरी हमारे अंदर है वो कमी कमजोरी हम अपने संबंध में देखना नहीं चाहते। तो हम कोशिश करते हैं कि जो कमी कमजोरी मेरे अंदर है वो सामने वाले में से निकल जाए। और होता क्या है कि जो हम खुद हैं, सामने वाले में वो चीज होती नहीं है, लेकिन हम खुद हैं, उसी सोच से उसी एटीट्यूड से हम चल रहे होते हैं, तो वो सामने वालों में भी हमें नजर आती, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो उस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने के लिए हमें आपस में वार्तालाप करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। जो हमारा मिसअंडरस्टैंडिंग से, संबंध खराब होने से कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, उसको रोकना चाहिए। और जिसकी बात है उन्हीं से, उनका एप्रिशिएशन करते हुए उनसे यदि हम पूछ लेते हैं, तो अनुभव कहता है कि बात बहुत छोटी होती है। और जिस बात छोटी का क्लैरिटी ना होने के कारण, हम अपने से पीड़ित होने के कारण, वो सामने वालों में बड़े स्तर पर प्रतिबिंब के रूप में देखने लगते हैं, जिसका परिणाम संबंध में मधुरता खत्म हो जाती है और धीरे धीरे संबंध में कटुता आ जाती है, गैप आ जाता है। और संबंध में जो आत्मीयता होनी चाहिए, एकात्मकता होनी चाहिए, एक ने कही दूसरे ने मानी, वो खत्म हो जाता है। एक दूसरे की बात को रिएक्ट करने लगते हैं, एक दूसरे की बात को सुनी अनसुनी करने लगते हैं। इस प्रकार से हम अपने अंदर की तरफ जाएं और अंदर की तरफ जाकर हमारे अंदर जो कमियां हैं, अवगुण है, जो हम कहते भी हैं, भारतीय संस्कृति हमारी धर्म और ईश्वरवादी संस्कृति है, तो हमारा समाज और परिवेश वही है, तो हम कहते भी हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। तो वो हम ईश्वर के साथ कह के तो उससे शक्ति और बुद्धि और बल ले सकते हैं, लेकिन हम समाज में, अपने परिवार के संबंधों में, कार्यक्षेत्र के संबंध में यदि उन बातों को हम यूज करते हैं तो हमारे जीवन में मुश्किलें बढ़ जाती हैं। हमेशा हम पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। बातें आती हैं, चली जाती हैं, लेकिन हम अपने जीवन में सदैव अब पॉजिटिविटी को लाने के लिए हमें इनपुट भी पॉजिटिव चाहिए, क्योंकि आज कोई भी संबंध को जब हम लेते हैं तो बॉस कैसा होगा, उसका इनपुट कैसा है, वो पॉजिटिव नहीं है। सास कैसी होगी, सास के विषय के जो इनपुट है वो कैसा मिल रहा है समाज से, हमें परिवार से, हमें कैसा मिल रहा है। पहले तो परिवार बड़ा देखा जाता था, संबंध बहुत सारे देखे जाते थे कि अधिक संबंधों में खुशी मिलेगी, अधिक संबंधों में आनंद मिलेगा, अधिक संबंधों में एक कार्य भार को उठाना सहज हो जाएगा, ज्वाइंट फैमिली देखा करते थे। लेकिन आज क्या हो गया, आज पॉजिटिव इनपुट ना होने के कारण संबंधों के बारे में आज हम क्या ढूंढते हैं कि वो परिवार हो जहां सास ससुर ना हो या अलग रह रहे, क्योंकि सास ससुर की परिभाषा संबंध की इस प्रकार की सन्मुख ला दी। लेकिन यदि वो पॉजिटिव इनपुट हो, माता पिता के प्रति, आज बच्चा 10वीं 12वीं क्लास पढ़ते ही माता पिता से क्या चाहता है, अलग रहना। भले वो पढ़ाई के माध्यम से अलगाव चाहता है, लेकिन वास्तविकता क्या होती है कि उसकी स्वतंत्रता, जो माता पिता उन्हें डिसिप्लिन की बात करते हैं, जो माता पिता उन्हें परिवर्तन की बात करते हैं, उनके जीवन के परिवर्तन के अनुभव को वो उनके जीवन में परिवर्तन होते हुए को देखकर देना चाहते हैं, उनको वो एक्मोडेट नहीं करना चाहते। आपके और हमारे बीच में भी पेरेंटल और चाइल्ड का जनरेशन गैप था, लेकिन हमने उन संबंधों को आत्मशक्ति होने के कारण, गुण विशेषताओं को देखने के कारण, मात्र पितृ संबंध की महत्वता हमारे को पॉजिटिव इनपुट मिलने के कारण हमने उन्हें निभाया था, हमने उन्हें पालन किया था। लेकिन आज वो चीजें नहीं, क्योंकि जब दो स्कूल के बच्चे मिलते हैं तो वो आपस में क्या इनपुट एक दूसरे को देते हैं, वो यही इनपुट देते हैं कि मैंने तो अपने माता पिता से परमिशन ले ली, उन्होंने मुझे सहमति दे दी है, आप भी लो, आप भी लो, और नहीं मिलती है तो आपस में मनमुटाव, दुर्व्यवहार और अनेक प्रकार की शिकायतें, अनेक प्रकार के तरीके अपनाने की कोशिशें होने लगती। तो आज हम यहाँ आध्यात्मिक क्षेत्र में आए हैं, यहाँ से ये आध्यात्मिकता की शक्ति लेकर जाएं कि हम सभी संबंधों की, आज भी हमारे समाज में अनेक ऐसे संबंध हैं जो पॉजिटिव एटीट्यूड से, पॉजिटिविटी से अपने संबंधों को निभा रहे हैं, और उन संबंधों को निभाकर हमें भी वो पॉजिटिविटी का निराशा में आशा की किरण दे रहे हैं। तो वो इनपुट हम लोगों को दें जो संबंधों के बारे में पॉजिटिव हो, तो उससे हमें रिजल्ट क्या मिलेगा कि हम जो आज जल्दबाजी हो रही है, वो जल्दबाजी संबंधों को निभाने में, निभाएंगे संबंधों को, तोड़ने की जल्दबाजी नहीं करेंगे। आज फट से हम रिजल्ट दे देते हैं, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, और जिनसे दूरी बढ़ती है, दूरी बढ़ने से संबंध टूट जाते हैं। तो आज हम देखते हैं जो हमारा परिवार है, संबंधों की मधुरता के अभाव में टूटते जा रहे हैं। परिवार घर बन गए हैं, मकान बन गए हैं, लेकिन उनकी मधुरता, उनकी आपसी तालमेल खत्म होता जा रहा है। तो अगर आपसी तालमेल को हम फिर से लाना चाहते हैं, तो हमें सद्भाव के लाने के लिए, खुशी को लाने के लिए, हमें पॉजिटिविटी को लाना होगा। हर संबंध के, किसी भी संबंध के बिना जीवन का कोई महत्व नहीं है। हमारी भारत की परंपराएं, रीत रिवाज में तो हर संबंध का औचित्य और महत्व बताया, हर संबंध की परम रीति रिवाज बताए हैं। आजकल गणेश चतुर्थी चल रही है, तो गणेश चतुर्थी में श्री गणेश की पूजा वंदना विश्वव्यापी स्तर पर और भारत के स्तर पर हो रही है, तो वहां वो श्री गणेश बनने का आधार ही है माता पिता का आज्ञाकारी होना। इतनी ऊंची उन्हें उपलब्धि हुई, उसका आधार ही है संबंध। पहचान भी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी पॉजिटिविटी के आधार से आज्ञाकारिता रूपी गुण को पालन किया, और उस आज्ञाकारिता के गुण से आज कोई भी संसार का कार्य करना हो तो क्या किसकी पूजा आराधना होती है, श्री गणेश की। आज ये इनपुट की आवश्यकता है कि श्री राम भी परिवार वाले थे, संबंध वाले थे, उनके संबंधों में, किस संबंध में कौन सी पॉजिटिविटी थी, वो इनपुट आज यदि पॉजिटिविटी हम अपने संबंधों के चिंतन में लाए, संबंधों का दिखाई दे रहा है वो फिर से आने लगेगा। आज हम देखते हैं कि संबंधों में वो सुगंध नहीं रही। सब जगह हम देखते हैं अर्थ कलियुग के कलिकाल की वेला में अर्थ युग ने दोनों ही परिवार के सदस्य प्रोफेशनल होते हैं, धन अर्जित करने के लिए घर से जाते हैं और बालक संस्कारों से वंचित रह जाता है, अब संबंध से वंचित रह जाता है। तो जन्म से ही वो संस्कार उनके अंदर नहीं आ पाते। लेकिन आध्यात्मिकता हमें बताती है कि हम संतति के संरक्षण के लिए, संतति और पेरेंट के संबंध की मधुरता के लिए हमें संतुलन रखना बहुत जरूरी। संतुलन माना भौतिकता और आध्यात्मिकता। आप और हम सब अपना बचपन याद करें। हम भाग्यशाली हैं जो हमारे माता पिता ने हमें पूरा समय दिया, हमारे संस्कारों के निर्माण के लिए उन्होंने प्रयास किए। आज दौड़ती भागती जिंदगी में इन चीजों का अभाव हो गया। तो हम अपनी पॉजिटिविटी को संबंधों में लाने के लिए हर हाल में पॉजिटिव को ही तैयार करें, अपने अंदर पॉजिटिविटी को ही भरें। और हमेशा पॉजिटिविटी हमें सिखाती है कि कोई बात अगर हो जाती है, बचपन में हम माता पिता हमें बोलते थे तो हमारे साथ भी होती थी, भाई बहन के साथ भी होती थी, तो कार्य स्कूल में दोस्तों के साथ भी होती थी, तो क्या होता था, थोड़ी देर में ही इस बात को भूल जाते थे, आपस में मिल जाते थे। तो कोई बात घटना संबंध में, किसी भी संबंध में आ जाए तो उसको हम भूल जाए, सॉरी कर ले, बहुत टाइम उस घटना को रुष्ट देव बन के हम रखे नहीं, क्योंकि रुष्टता अप्रसन्नता हमारी बहुत सारी मानसिक शक्तियों को नष्ट करती है। और वो मानसिक शक्तियां जब हमारी नष्ट होती हैं तो हमारी हेल्थ पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो उसके लिए हमारे जीवन में पॉजिटिविटी की बहुत आवश्यकता। नेक्स्ट है कि हम अपने जीवन में सदैव पुरुषार्थ तो करते ही हैं, लेकिन हम भाग्य पर भी भरोसा करें। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को भी कुछ नहीं मिलता। आप देखते हैं हम बच्चों को कुछ बनाना चाहते हैं लेकिन बच्चे का इंटरेस्ट किसी दूसरे में, क्योंकि वो जीवन की लंबी यात्रा जीकर आया है। हम उसे बच्चा समझ रहे हैं लेकिन वो बच्चा कौन है? वो बच्चा एक ह्यूमन बीइंग है, बीइंग माने आत्मा। जो कल भी आपने राजयोग के अभ्यास में सेल्फ कॉन्शियस को, सेल्फ एनर्जी को एनालिसिस राजयोग के माध्यम से किया, तो उसके अंदर आपने आज भी आत्मा शब्द सुना। तो ये आत्मा जो है, चेतना जो है, वो चैतन्य आत्मा आज हमारे परिवार में मेल फीमेल चाइल्ड बन के आया है। लेकिन वो आत्मा अपने साथ पूर्व में 100 वर्ष की लंबी आयु प्राप्त करके अपने जीवन को जीने के संस्कारों को भी लेकर आया है। उदाहरण के रूप में हम चित्रित करते हैं, आज कहीं आज भी हम दृश्य देख रहे हैं, वो बरसात के मौसम में कहीं बाढ़ है कहीं सूखा है, लेकिन बहुत बाढ़ में समझो पिछला जन्म उसने शरीर का त्याग किया, अपने परिवार की बहुत सारी संग्रह की हुई वस्तुओं को पकड़ना वो चाहता है लेकिन उसके हाथ से छूट रही है। उसके मित्र संबंधी परिवार वालों से वो सहयोग की कामना करता है लेकिन वो भी उससे छूटते जा रहे हैं। और फिर ऐसे ही डर, भय, चिंता और जीवन पर्यंत संग्रह की हुई उपलब्धियों का अपने ही सन्मुख नष्ट होते हुए देखते हुए उसकी जीवन की लीला समाप्त हो जाती है। और वो आत्मा, वो बालक, वो बुजुर्ग बच्चा बनके आज हमारे घर में बालक बनकर आ जाते। हम उसको न्यू कवर न्यू समझते हैं कि ये सलेट क्लियर है, लेकिन उस लेख पर तो पिछले कार्मिक अकाउंट का सारा कुछ लिखा हुआ है। इसलिए आज हम देखते हैं कि हम शुभ चिंतक बनकर, वेलविशर बनकर अपने बच्चों को कुछ सिखाना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं, किसी आकार में देखना चाहते हैं, लेकिन बालक अब उस बच्चे को आप अगर जल के पास ले जाएंगे, पानी के पास ले जाएंगे, तो वो क्या करेगा? खुश होगा उस पानी को देखकर या डरेगा? क्या होगा? चिंतित होगा, डरेगा, क्योंकि उस पानी के द्वारा ही उसकी जीवन की सब उपलब्धियां खत्म हुई थी, सब संबंध खत्म हुए थे और सब कुछ उसके जीवन का चक्र भी स्टॉप हुआ था, जिसके माध्यम से वो जल को देखते ही घबराएगा, अकेलेपन से डरेगा। ये उसकी पूर्व जन्म की यात्रा उसके अंदर निहित है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं हमें कर्म और भाग्य पर भी भरोसा करना चाहिए। समय से पहले भाग्य से ज्यादा न किसी को मिला है, न किसी को मिल सकता है। इसलिए जो हमें बहुत चाहे ना, हर संबंध में अगर हम चाहे ना को रखते हैं तो हमारे संबंधों में मधुरता खत्म हो जाती है। अगर संबंधों में मधुरता लाना चाहते हैं तो हम अपनी चाहे ना को कर्म और भाग्य पुरुषार्थ करते हुए भी कर्म और भाग्य पर आधारित करना होगा, क्योंकि जो जिसके भाग्य में है उससे ज्यादा कोई उसको दे नहीं सकता। दूसरा, आज हम देखते हैं कि आज ईश्वर ने हम सबको दो चीजें गिफ्ट में दी हुई है। मानव सबसे उत्तम रचना ईश्वर की है और उस ईश्वर उत्तम रचना के अंदर दो गिफ्ट ईश्वर ने हमें दिए हैं। एक है विवेक युक्त बुद्धि और एक स्वतंत्रता। हर एक को भगवान ने बुद्धि दी है, ये करो या ये करो, और स्वतंत्रता भी हर एक को दी हुई है कि आपके पास आपकी लाइफ है, आप जैसे चाहो उसे जियो। लेकिन यदि हम चाहना को बढ़ा देते हैं और चाहना को हम परिवर्तित नहीं करते, कर्म और भाग्य पर स्टॉप नहीं करते, तो परिणाम देखा जाता है कि बाद में वो घटना के रिजल्ट आने पर हमें फ्रस्ट्रेशन होता है और वो फ्रस्ट्रेशन हमें पश्चाताप के सिवाय कुछ नहीं देता। इसलिए हमें चाहिए कि अपनी बहुत चाहनाओं को रोक देना चाहिए। आज हम देखते हैं अगर किसी बच्चे से पूछा जाए, स्कूल विद्यार्थी से, तो बच्चे का रिजल्ट आने से पहले बच्चा अपनी क्षमता से नहीं पढ़ रहा है, बच्चा इस चिंता से पढ़ रहा है कि मम्मी पापा ने मुझे टारगेट दिया है। क्योंकि हम बच्चे को देखना चाहते हैं, हम बच्चे से चाहना रखते हैं, बच्चा भी इस बात को अच्छी रीति समझता है। लेकिन जब बच्चा अपनी क्षमता को उसमें परफेक्शन नहीं पाता तो वह ऐसा कदम उठा लेता है और उसके पीछे होती है हमारी चाहना, और फिर वो घटना के बाद हम फ्रस्ट्रेशन में जाते हैं और फिर वो सहन करना हमको मुश्किल हो जाता है। इसलिए यदि हम अपने संबंधों में मधुरता चाहते हैं तो हम इशारा दें, समझानी दें, परवरिश दें, संस्कार दें, गाइडलाइन दें, अपने अनुभव की सक्सेस स्टोरी दें, अन्य लोगों की सक्सेस स्टोरी दें, लेकिन कभी भी उनको ओवर चाहना उनसे संबंधों में नहीं रखें। एक पिता पुत्र के या शिक्षा और बच्चे के एंगल से ही नहीं, बल्कि सभी संबंधों में हमें अपनी चाहना के बैलेंस करना होगा। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि आज हमें अपने परिवार में, ये जो छोटा सा मोबाइल है ना, ये भी हमारे संबंधों की मधुरता को सोख रहा है। आज से 30 साल पहले वाले संबंधों को हम याद करें 50 साल वाले संबंधों को याद करें तो आपस में बैठते थे तो एक दूसरे से आंखों से आंखें मिलाकर बात करते थे, वाइब्रेशन कैच करते थे, फील करते थे, एक दूसरे के सुख दुख का एहसास करते थे। आज क्या करते हैं? पहले तो घर में होते ही नहीं है, जब घर में होते हैं संबंधों में होते हैं तो कहां होते हैं? मोबाइल में होते हैं। आंखें कहां हैं हमारी? जो संबंध का आदान प्रदान करती थी, फीलिंग्स का अनुभव करती थी, जो संबंधों में वाइब्रेट देती थी, आज वो कहां चली गई? है सभी के पास? सभी की शिकायत ये है कि दिन भर तो दफ्तर में रहेंगे और जब घर में आएंगे तो घर पर भी इनके फोन आ जाएंगे, फोन नहीं आएंगे तो मैसेज आ जाएंगे, मैसेज नहीं आएगा तो मेल आ जाएगा, उसमें लगे रहे। समय ना देना, एक दूसरे की फीलिंग को फील ना करना, एक दूसरे के वाइब्रेशन को अनुभव ना करना। हम ये नहीं कहते इसकी आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है, लेकिन इसकी एक समय सीमा होनी चाहिए, इसका प्रयोग होना चाहिए। जब हम अपने संबंधों में आए तो संबंधों से प्यारा मुझे मोबाइल नहीं होना चाहिए। आज हमारी जो आई कॉन्टेक्ट होता था, उससे जो एनर्जी मिलती थी, उससे जो भाव मिलता था, वो आज हमारे संबंधों में खत्म हो गए, जिसके कारण पहले नीची नजर उसकी हुआ करती थी जो कोई गलत कार्य करते थे, तो वो नजर झुकाकर, गर्दन झुकाकर रहा करते थे। आज इस छोटे से साधन ने हमारी संबंधों की मधुरता को, संबंधों के समय को पी लिया है। क्या हम तैयार हो सकते हैं? आज अगर हमारे फोन में डाटा ना हो तो क्या, कैसा दिन कटता है, कैसा समय कटता है, कैसे मन की हालत होती है? अनुभवी है ना सभी, कभी कोई स्टेट में हो जाए, कभी कोई देश में घटना हो जाए तो डाटा बंद करते हैं, तो कैसा समय, कितना समय ही समय, समय ही समय। आज एक हमारे सामने संबंध को निभाने के लिए समय नहीं है और वो डाटा बंद हो जाए तो समय ही समय बढ़ जाता है। समय कहां से बढ़ा? मजबूरी में बढ़ा। क्या आज हम आध्यात्मिक सशक्तिकरण, राज्यों की शिक्षा और संबंधों की मधुरता, सद्भाव, खुशी को, आनंद को समझते हुए ये अपने से संकल्प ले सकते हैं कि हम विदाउट इंटरनेट फैमिली इंटरेक्शन करेंगे? क्या करेंगे? विदाउट इंटरनेट फैमिली इंटरेक्शन। वो वाईफाई तो हमारे संबंधों को उदास, सुस्त, चिड़चिड़ा बना रहा है, और ये वाईफाई जो आज से 50 साल पहले थी संबंधों में, वो वाईफाई को फिर से पुनर्जीवित करेंगे, जिससे हमारी लाइफ जो आज तनाव वाली है, अभाव वाली है, दुख दर्द से भरी हुई है, किसी के पास तो संबंध नहीं है, लेकिन किसी के पास संबंध होते हुए भी उन्हें संवेदना ही नहीं है संबंध की, उसको लाने के लिए फिर से हम इस संकल्प को यहां से लेकर जाएंगे कि इस मोबाइल को हम टाइम टू टाइम यूज करेंगे, इतने समय से लेकर इतने समय तक हम सिर्फ अपने संबंधों के लिए और संबंधों की केयर के लिए, संबंधों की फीलिंग के लिए, उनकी हीलिंग के लिए ही हम देंगे। हो सकता, जो कहते हो सकता वो थोड़ा सा इशारा देके बता दीजिए। थैंक यू, थैंक यू। मना नहीं करते, यूज करना है क्योंकि आज इसकी बहुत आवश्यकता है, लेकिन संबंधों से ऊपर इसकी आवश्यकता नहीं है। संबंधों को साथ निभाते हुए हमें इसका पालन करना है। इसके साथ साथ हम हमारी आदरणीय दादी जानकी जी कहा कर दादी प्रकाशमणि जी कहा करती थी, जो संस्था की मुख्य प्रशासिका रही, जिनके सानिध्य में सारा विश्व का ब्रह्मा कुमारी ग्लोबलाइजेशन हुआ, उनका ये संबंधों के लिए एक सीख थी कि अगर आपको संबंधों में मधुरता लानी है और सद्भाव पैदा करना है तो हार मान लो। हार्मनी शब्द क्या है? हार्मनी इंग्लिश वर्ड है, सद्भाव, और हिंदी में क्या आता है? हार मान। हार मानना माना। आज ईगो क्लैश के कारण संबंध बिगड़ते हैं। मैं क्यों सुनूं, मैं क्यों मानूं, मैं कोई कम हूं क्या? ये ईगो क्लैश। लेकिन हमारी दादी जी समझाती थी, सिखाती थी, उनका जीवन खुली पुस्तक था विनम्रता की। वो इस बात को बताती थी कि संबंधों की मधुरता लानी है तो हार मान लो। उस वक्त वो समय वातावरण वो बदल जाएगा, और बदलने के बाद आप थोड़ी देर में अनुभव करेंगे कि वास्तव में उनकी भाव ऐसा नहीं था, वो शब्दों का ऐसा चयन हो गया जिसके कारण हमारा ईगो क्लैश हो गया। भाव नहीं होता, कई बार हमारे शब्द ऐसे होते हैं जो सामने वाले को हट कर जाते और संबंध में सुगंध के बजाय दुर्गंध आ जाती। तो आइए हम यहां आए इस धरनी पर, इस आध्यात्मिक उर्वरक धरनी पर जो पल आपने व्यतीत किए हैं, इसके अंतर्गत हम देखें कि ये भी किस प्रकार इतना बड़ा कार्य व्यवहार संबंध निभाते हुए चल रहा है। ब्रह्मा कुमारी संबंध तोड़ना नहीं सिखाता, बल्कि संबंध जोड़ना सिखाता है, सुधारना सिखाता है, विकसित करना सिखाता है। क्योंकि हमारी भारत की संस्कृति है ही वसुधैव कुटुंबकम, थी फिर से बन रही है, ये इसका जीता जागता उदाहरण है। हम कहते हैं हम कर्म योगी हैं, लेकिन जब हम खुद ही संतुष्ट प्रसन्न मधुर नहीं होंगे, आनंदित नहीं होंगे, खुश नहीं होंगे, तो हम कर्म को भी कैसे करेंगे? वर्क इज वर्शिप। वो वर्क वर्शिप कब होगा? जब हमारे संबंधों में खुशहाली होगी, प्रसन्नता होगी, तभी हमारे वर्क में एफिशिएंसी आएगी, सेटिस्फेक्शन आएगा, कंटेंटमेंट आएगा। तो उसको लाने के लिए हमें छोटी सी समझदारी की आवश्यकता होती है कि सिचुएशन को समझ लें और समझकर उस सिचुएशन में क्या एडिशन है वो ऐड कर, करेक्शन नहीं, एडिशन। एक छोटी सी कहानी याद आती है कि एक माता और पुत्र थे। माता ने अपने पुत्र को बड़े कष्ट से पिता के अभाव में पाला था। जब पुत्र बड़ा हुआ तो विवाह हुआ, तो पुत्र कभी नहीं चाहता था कि पत्नी और मां की कभी आपस में अनबन हो, क्योंकि वो मां की साधना यातना के जीवन को जानता था। तो उसने अपने संबंधों को पत्नी के साथ और मां के साथ निभाने के लिए ये संकल्प लिया, दोनों खुश रहे, दोनों से मुझे खुशी मिले। जीवन चल रहा था, अचानक एक दिन घटना घटित हुई कि मां भोजन बना रही थी। मां ने पुत्र वधु से कहा कि बेटी ये कलश उठा के इधर से इधर रख दो। क्या कहा? कलश उठाकर यहां से यहां रख दो। पुत्र देख रहा था, बच्ची ने, जैसे हम सब जानते हैं, ससुराल शब्द और सास शब्द का जो इनपुट मिला हुआ है उसके अनुसार उसने उसका रिएक्शन दिया, और ना में परिवर्तन, ना का रिएक्शन दिया। उस भाई ने, बालक ने इस बात को समझा, और समझते ही उसने एक युक्ति रची कि अगर आज ही इस बात को रिपेयर नहीं किया गया तो जीवन की यात्रा कष्टमय दुखमय हो जाएगी और तीनों ही परेशान हो जाएंगे। उसने एक सुंदर सा हार, तीन जनों के पानी का कलश कितना बड़ा होगा, इतना 4-5 किलो का हार घड़वा कर मां को लाकर दिया और मां से कहा आप इसे गिफ्ट कर दो। मां ने उस हार को पुत्र वधू को गिफ्ट किया। अब उतने ही भारी वजन को पुत्र वधू 24 आवर्स अपने गले में पहनकर खुश होती थी। मां की हर बात को मानने के लिए तैयार हो, अर्थात हम एप्रिशिएशन करें। अभी सिचुएशन उनके सामने भी आई, संबंध टूटने का दृश्य आ गया जीवन में, परिस्थिति आ गई, लेकिन उसने सूझबूझ और समझदारी से वहां की वहां उसको रिपेयर कर दिया। अभी दोनों माता और बहू में खुशहाली के कारण उस भाई के जीवन में भी क्या हो गई, खुशहाली। छोटी सी समझदारी हमारे मूल्यवान जीवन को बहुमूल्य बना देती। तो इसके लिए ये सब धारणाओं को, ये सब बातों को ध्यान में रखने के लिए हमें स्वयं से संबंध रखने की अति आवश्यकता है, क्योंकि चाहते तो हम सब भी अपने संबंधों में ये बातें हैं, जानते भी हम सब हैं, लेकिन हो नहीं रहा है। उस होते हुए को रोकने के लिए हमें स्वयं के मन को, स्वयं के विचारों को सशक्त बनाना होगा, अपनी आत्मा से संबंध को निभाना होगा। और वो आत्मिक संबंध जब परमात्मिक संबंध को निभाने की ताकत ले आता है तो सोच, बोल और कर्म परिवर्तित हो जाता है। तो आइए संबंधों को मधुर खुशहाल बनाने के लिए कुछ श्रेष्ठ विचार हम अपने मन के अंदर लाते हैं। उन श्रेष्ठ विचारों को प्रतिदिन साय और सवेरे दोहराएंगे तो आप पाएंगे कुछ समय पश्चात आपके घर का वातावरण खुशहाल होने लगेगा, आपके परिवार के संबंधों में संतुष्टता होने लगेगी, आपके परिवार में खुशहाली आने लगेगी। ऐसा ही सब चाहते हैं ना। आज तो क्या कहते हैं, इसके लिए कुछ कर लो, लेकिन कोई ये भाषा ये अनुभूति परिवर्तित हो जाए। तो आइए कुछ पल के लिए हम अपने स्वयं से संबंध जोड़ते हुए उस परम संबंधी परमात्मा से अपने मन के तार को जोड़ेंगे और इन गुणों को अपने अंदर लाने का संकल्प करेंगे। आंखें खुली रखें, बैकबोन को सीधा रखें, सब बातों से अपने मन को समेट लें। अपने आप को, अपने सभी संबंधों के बीच में लाएं। जितने भी हमारे संबंध हैं, प्रातः जगने से लेकर रात्रि सोने तक, जिन जिन संबंधों के साथ हमारा व्यवहार होता है, कर्म होता है, उन सब को अपने सन्मुख लाइए। अब उनमें से एक वह संबंध चुनिए जो आपका सबसे प्रिय, सबसे नजदीकी संबंध है। अब उस संबंध को भी चैतन्य शक्ति के रूप में देखिए, चैतन्य शक्ति होने पर वह हमारा संबंधी है। दो ब्रह्मकुटी के मध्य चमकता हुआ सितारा है, संबंध में आत्मीयता है। गुण ही गुण है, विशेषताएं हैं, बहुत अच्छे हैं। जन्म जन्म हमने साथ निभाया है, मैं आत्मा शक्ति स्वरूप, शांत स्वरूप, मेरे घर का वातावरण शांति और खुशी से भरपूर है। मैं खुशहाल हूं, आनंद में हूं, मुझे हर संबंध में शांति, खुशी, प्रसन्नता को पाती। मेरा घर स्वर्ग है, मैं मैं स्वस्थ हूं। परमात्म शक्तियों का ओरा परम पिता से प्राप्त हो रहा है। मुझ आत्मा का संबंध शाश्वत और अविनाशी परम सत् परम पिता परमात्मा से जो सदैव मुझे अनकंडीशनल लव देता है, पीस देता है, हैप्पीनेस देता है, ब्लिस देता है, कुछ विचार संबंधों की गरिमा के लिए रात्रि सोने से पहले आप दोहराएं और सुबह जगते ही अपनी कॉन्शियस में इन विचारों को लाएं तो आप पाएंगे कि आपका स्वयं से संबंध प्रगाढ़ होगा, सशक्त होगा, परमात्म शक्तियां आपके अंदर आएंगी और उसका प्रभाव आपके सभी संबंधों पर अवश्य पड़ेगा और आपका जीवन खुशहाल, प्रसन्न, आनंद में संबंधों की खुशबू से भरपूर होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ स्वयं के साथ जस्टिस करें और सबके साथ भी जस्टिस करें। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद राजयोगिनी कविता दीदी जी का।